ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम् नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम सुलोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंध 8 अध्याय 12 और श्लोक संख्या है 9 और 10। 9 में प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं है 9 श्लोक। श्लोक नंबर 10 लिखा हुआ है, हम लोग इसका उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात श्लोक के ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मैं पहले श्लोक 9 का अनुवाद पढ़ता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए, उसके बाद श्लोक नंबर 10 का उच्चारण करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। जो निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं वे आपको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं। मीमांसक विचारक आपको धर्म रूप मानते हैं। सांख्य दार्शनिक आपको ऐसा परम पुरुष मानते हैं जो प्रकृति तथा पुरुष के परे हैं और देवताओं का भी नियंत्रक है। जो लोग पंचरात्र नामक भक्ति के नियमों के अनुयायी हैं वे आपको 9 शक्तियों से युक्त मानते हैं तथा पंतजलि मुनि के अनुयायी जो पंतजल दार्शनिक कहलाते हैं आपको उस परम स्वतंत्र भगवान के रूप में मानते हैं जिसके न तो कोई तुल्य है न जिससे कोई श्रेष्ठ है। आज का श्लोक। नाहं परायो ऋषयो न मरीच मुख्या। जानन्ति यद्रचितं खलु सत्त्वसर्गः यन्मायया मुचित चेतसः ईश दैत्या। मर्त्यादयः कुमित सस्वदत भद्रवृतः। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ना ना तो अहम मैं पर आयो ऐसा व्यक्ति जो लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहता है। ब्रह्मा जी ऋषयः 7 लोकों के 7 ऋषि। न न तो मरीचि मुख्या मरीचि ऋषि आदि। जानन्ते जानते हैं यत् जिससे भगवान से विरचितं यह ब्रह्मांड रचा गया है, खलो निसंदेह सत्व सर्गः, यद्यपि सतो गुण में उत्पन्न यत् मायया, जिसकी माया के प्रभाव से मुसित चेतस मोहित चित, इस हे स्वामी दैत्यः असुर मर्त आदयः मनुष्य इत्यादि, किम उत क्या कहा जाए, सस्वत सदैव अभद्रवृता, प्रकृति के नियम पर प्रकृति के निम्न गुणों से प्रभावित। अनुवाद मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए, उसके बाद मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्रभु, सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाने वाला मैं, ब्रह्मा जी तथा मरीचि आदि महर्षि सतोगुण से उत्पन्न है, तब भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त हैं और यह नहीं समझ पाते कि यह सृष्टि क्या है। आप हमें छोड़ भी दें तो उन असुरों तथा मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमो गुणों से युक्त हैं, वे आपको कैसे जान सकते हैं। कृपा करके इस अनुवाद को दोहराइए। हे प्रभु, सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाने वाला मैं, ब्रह्मा जी तथा मरीचि आदि महर्षिगण सतोगुण से उत्पन्न हैं, तब भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त हैं और यह नहीं समझ पाते कि यह सृष्टि क्या है। आप हमें छोड़ भी दें तो उन असुरों तथा मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमो गुणों से युक्त हैं, वे आपको कैसे जान सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्ताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिताकांत राधाकांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेभ्यः, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो यम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायने सर्वमंगल स्वरूपाय सर्वानंद विधायने। यह श्लोक कौन बोल रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं कि सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाने वाला मैं, ब्रह्मा मरीचि आदि श्रेष्ठ जब जो सतो गुण से उत्पन्न हुए हैं, ये सब जब आपको तत्वतः नहीं जान पाए तो वैसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो सदा रजो तथा तमो गुण में लिप्त हुए हैं। अर्थात तो वैसे व्यक्ति के विषय में संभावित कहा जा रहा है कि शायद कोई इसको जान पाए। आगे स्पष्ट हो जाएगा आगे के श्लोकों में, क्योंकि इससे पिछले वाले श्लोक में छठे श्लोक में भगवान शिव ने कहा है कि जो आपके चरण अंबुज का ध्यान करता है, भक्ति करता है, वह व्यक्ति आपको ठीक से जान जाता है। और सोचिए कि शिव जी अपनी स्थिति अपने आप व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शिव जी को एक गुण का अधिष्ठाता बताया गया है, लेकिन वो सतोगुण में सदा रहते हैं, अधिष्ठाता हैं, इंचार्ज हैं। इसलिए लोगों को अपने द्वारा यह शिक्षा देना चाहते हैं, अपने कथा के द्वारा, अपनी आत्मानुभूति के द्वारा, कि जो व्यक्ति अगर भगवान की शक्ति का अगर परीक्षण करना चाहता है या उससे मोहित होकर के कुछ और आगे की स्थिति को परीक्षण करना चाहता है, तो मेरी स्थिति आप लोग देख चुके हैं कि मैं भगवान से निवेदन, आगे के श्लोकों में आएगा, भगवान से निवेदन कर रहे हैं शिव जी कि मुझे इस स्वरूप को दिखाइए। कहने का आशय इस श्लोक का यह है, श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की, कि जैसे हमारे हृदय के अंदर जो गुण है ऊपर उठते और नीचे उतरते रहते हैं, क्योंकि कल के श्लोक में गुण व्यतिकरक शब्द आया है, जब उसका उतार चढ़ाव होता है तो उसके अनुसार हमारी चेतना भी बदल दी जाती है। जब सतोगुण की प्रधानता होती है तो हम भगवान को ठीक से जानने का प्रयास करते हैं, और जब सतोगुण की कमी हो जाती है, रजोगुण और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है, तो हमारी चेतना, हमारी मानसिक स्थिति हिलडुल जाती है। यह गुण का प्रवाह ही ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है जो लोगों को ऊपर नीचे माया के थपेड़ों में डालती और ऊपर नीचे डालती और इतराती रहती है। क्योंकि आगे कथाओं से पूर्णतः यह स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान से शिव जी जो प्रार्थना किए हैं कि हमें यह स्वरूप दिखाइए, तो भगवान पहले ही सजग कर रहे हैं कि मैं तो उन दैत्यों के हृदय में एक नई चेतना का विकास करने के लिए मैंने यह स्वरूप धारण किया था, स्त्री स्वरूप धारण किया था, इसलिए यह नई स्थिति की अनुभूति करने के लिए जब आप यह रूप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कहां अमरता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी कि हम अमृत पी लें और हम अमर हो जाएं, लेकिन सारी स्थितियां गुणों के व्यतिरेक से उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक जो संतुलन था वो बिगड़ गया, जिसे वो अमरता के प्राप्त के लिए जितने परिश्रम किए थे उन परिश्रम को भूल चुके, बस भगवान के उस मोहिनी स्वरूप को देख, स्त्री स्वरूप को देख करके। क्योंकि यह स्थिति जो है यह गुण के व्यतिरेक के कारण चढ़ती उतरती रहती है। इसलिए संत महात्मा लोग कहा करते हैं कि जो भक्ति पद पर चलने वाले व्यक्ति हैं, अभ्यासी हैं, उनको निरंतर ऐसे वातावरण में, ऐसी स्थिति में, ऐसे प्रभाव में, ऐसे संगति में रहना चाहिए जिससे उनका मानसिक संतुलन हमेशा बना रहे। नहीं तो संग का दोष, आदमी के वार्तालाप का दोष, उसके खान पान का दोष, सब कुछ हमारी चेतना को दूषित करने में लगा है। लेकिन हम अगर सतोगुण में स्थित व्यक्ति जो भक्ति पथ में ठीक ढंग से चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके संग में अगर हम रहेंगे तो गुण का व्यतिरेक कभी आएगा हमारे हृदय के अंदर, लेकिन हम फिर सजग हो जाएंगे। इस अध्याय का पूरा सारांश ही यही है कि भगवान शिव अपने स्वभाव से, उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा, मोहिनी स्वरूप को देखा और चुप हुए, लज्जित नहीं हुए भगवान शिव, क्योंकि संग में सती देवी, पार्वती जी भी है, सती जी हैं, उनके भूतगण हैं। लेकिन उस परिवस्था के बाद भी इतना आगे पीछे मोहिनी रूप के टच करने के लिए, आलिंगन करने के लिए भागने के बावजूद भी, यहां तक कि स्पष्ट इस अध्याय में लिखा हुआ है, भगवान ने मोहिनी स्वरूप को पकड़ लिया, आलिंगन किए, लेकिन अपने हाव भाव और प्रयास से मोहिनी स्वरूप, मोहिनी रूप धारण करने वाले भगवान छुड़ा करके भागे, और भागने के कारण इतनी मंद मंद हवाएं चल रही थी कि वो स्पष्ट लिखा हुआ कि निर्वस्त्र हो चुके थे, एक शब्द आया है कि वस्त्रहीन हो चुके थे भगवान। एक पेड़ मोहिनी स्वरूप भगवान इस पेड़ के आड़ में, उस पेड़ के आड़ में जा जा करके छिप रहे और भगवान शिव भागते जा रहे। लेकिन इतने के बावजूद भी शिव जी मोहित नहीं हुए, उनको अनुभूति मिल गई, उतने से आकर के अपने सतोगुण की स्थिति में पश्चाताप करने लगे, बैठ गए। स्वयं फिर भगवान अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं कि देखो आपको मैं समझ पाया कि आप किस स्थिति में हैं। आपने मेरे माया स्वरूप को देख लिया, स्त्री स्वरूप को देख लिया, लेकिन असलियत, मेरे असलियत को आप जानते हो, इसलिए आप लज्जित नहीं हुए। यह स्थिति इस श्लोक के अंदर यह बताया जा रहा है कि यह माया भगवान शिव अगर कहा जाए तो यह वाक्य भगवान के लिए कह रहे हैं शिव जी कि यह माया, कि आपके माया को कौन जान सकता है, आपकी सही स्थिति को कौन जान सकता है। अपने औकात का वर्णन कर रहे हैं शिव जी कि जब मैं और ब्रह्मा जी और मरीचि आदि ऋषिगण नहीं जान पाए आपकी असलियत को, जो मायावद जीव है, जो कभी डूबता है कभी इतराता है, जो संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ खोने के लिए अपनी पूरी आयु दे देता है, वैसे व्यक्ति कहां आपको जान पाएगा। इसलिए जो नवे श्लोक में जो नौ शक्तियां का वर्णन किया गया है वो मैंने लिखा है एक जगह से कि भगवान की ये नौ शक्तियां हैं, जिसे श्लोक क्या है, श्लोक नौ में आया है कि नौ शक्ति युक्त जो व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर नौ शक्तियां पाई जाती हैं, वो परम विशेष पुरुष होते हैं। पहला गुण बताया गया है कि विमला, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कलुषता नहीं होती। दूसरा है उत्कर्षिणी, तीसरा ज्ञान, चौथा क्रिया, पांचवा योगा, छठा प्रही, सातवां सत्य, आठवां ईशाना, और नवा है अनुग्रह। जो लास्ट वाला जो शक्ति है इसी कृपा के बस में आकर के हम लोग उनको ठीक से जान पाएंगे भगवान को, क्योंकि श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मीमांसक लोग होते हैं वो अपनी अपनी मीमांसक में अपनी अपनी ज्ञान में अपनी अपनी क्रिया में मस्त रहते हैं, लेकिन वो भी आपके चरित्र को ठीक ढंग से नहीं जान पाते। छह शास्त्र है, छह शास्त्र के प्रणेता जो है वो अपने अपने में मस्त है। छह शास्त्र है वैशेषिक शास्त्र, न्याय शास्त्र, पूर्वमीमांसा, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और वेदांत शास्त्र, जिनके अलग अलग प्रणेता है। कणाद ऋषि वैशेषिक शास्त्र के प्रणेता हैं, गौतम ऋषि न्याय शास्त्र के, जैमिनी ऋषि पूर्व मीमांसा, कपिल देव जी सांख्य शास्त्र और पंतजली जी है योग शास्त्र, और श्री वेद व्यास जी हैं वेदांत शास्त्र के रचयिता। जब इतने बड़े चढ़े लोग जब आपके तत्व को ठीक से नहीं जान पाए, इसीलिए यह श्लोक पहले शिव जी बोलते हैं उसके बाद अपनी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में उठे हुए व्यक्ति आपके ठीक स्थिति को नहीं समझ पाते तो अन्य जीवों की तो कहना ही क्या है। मैं अनुवाद को पढ़ता हूं एक बार ध्यान से, फिर तात्पर्य पढ़ूंगा। हे प्रभु, सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाने वाला मैं, शिव जी अपने को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तथा मरीचि आदि महर्षि सतोगुण से उत्पन्न है। इससे यह उल्लेखित होता है कि जो सतोगुण में स्थित व्यक्ति है उसको ही अधिक चांस है कि वह भगवान की भक्ति ठीक ढंग से कर पाएगा। सतोगुण में रहने का जो व्यक्ति सदा प्रयास करता है वही व्यक्ति भक्ति पथ को ठीक ढंग से अपने जीवन में उतार पाएगा। अगर सतोगुण से थोड़ा सा हम विक्षेपित होते हैं तो निश्चित रूप से हम भक्ति पथ से भटक जाएंगे और अपने जीवन के उद्देश्य को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तब भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त हैं। भगवान ने ऐसे नहीं गीता में कहा कि मम माया दुरत्य, दुरत्य है। कोई कोई टीकाकार लोग तो कहते हैं कि यह बिल्कुल ही असंभव है, लेकिन कोई कोई कहते हैं कि नहीं संभव है। शुद्ध सतोगुण की स्थिति में अगर ठीक से भक्ति किया जाए तो यह संभव है कि माया को जीत लिया जाएगा। इसका उत्तर भगवान ने 18वें अध्याय में दे दिया है कि जो भक्ति करता है, एकाकी भक्ति करता है, वह मेरा प्रिय बन जाता है, वह मुझको ठीक ढंग से जान पाता है। तब भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त हैं और यह नहीं समझ पाते कि सृष्टि क्या है। अरे जब हम लोगों की स्थिति यह है कि हम लोग आगे से जो वस्तु है सामने है उसको हम देख पाते हैं, लेकिन पीछे क्या है वह हम नहीं देख पाएंगे, तो यह सृष्टि की रचना कैसी हुई, सृष्टि के अंदर कौन कौन से तत्व हैं और मूल तत्व क्या है, इसकी गहराई में हमारा दिमाग कहाँ काम करेगा। आप हमें छोड़ भी दे तो उन असुरों तथा मनुष्यों के पास कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमोगुणी में स्थित है, तमोगुण में, वो कहां आपको जान सकते हैं। जानने का, भगवान को ठीक से समझने का एक ही सूत्र है, भक्त्या माम अभिजानति, भक्ति के द्वारा कोई भगवान को जान सकता है और किसी प्रयास से नहीं। क्योंकि भगवान स्वयं सूत्र देते हैं कि तुम मुझे किस सूत्र के आधार पर मुझे पकड़ सकते हो, किस प्रकार मुझे अपने वश में कर सकते हो। जो यह मास चल रहा है दामोदर मास, आप देख रहे हैं जसोदा मैया रस्सी से बांधी भगवान कृष्ण को। केवल भक्ति है, वात्सल्य भाव है। भगवान स्वयं बने प्रेम में। जिनका एक नाम मुक्तिदाता है, भगवान का मुकुंद नाम है, जो सबको कुंद से बंधन से छुड़ाने वाले हैं, मुक्त करने वाले हैं, वो आज बंधे हुए हैं। भगवान के लिए भक्ति सर्वोपरि है कि हम भक्ति से भगवान को ठीक से जान पाएंगे। इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी कई भगवद गीता के श्लोक को कोट करते हैं कि कैसे हम भगवान को ठीक से जान पाएंगे। तात्पर्य को पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की। वस्तुतः सतोगुणी लोग भी भगवान की स्थिति को नहीं समझ सकते। एक लाइन में क्लियर। वस्तुतः सतोगुणी लोग भी भगवान की स्थिति को नहीं समझ सकते। केवल सतोगुणी, सतोगुण की प्रधानता से ही हम भगवान को ठीक से जानना यह असंभव है। प्रभुपाद जी सीधा कट करते हैं। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमो गुण में स्थित हैं। हम भगवान के विषय में कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। अनेक ऐसे विचारक हैं जो परम सत्य को समझने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे निम्न गुणों से युक्त होने के कारण मद्यपान, मांसाहार, अवैध मैथुन तथा द्वित क्रीड़ा जैसी बुरी आदतों से अनुरक्त होने के कारण भगवान के विषय में किस तरह सोच सकते हैं। ये बुरे विचार जिनके अंदर हैं, ये बुरी आदतें जिनके अंदर हैं, वो व्यक्ति सपना न देखे कि हम भगवान को जान लेंगे। क्योंकि भगवान को जानने के लिए एक तरफ छोड़ना पड़ेगा, तब एक तरफ कुछ मिल पाएगा। हम लोगों की जो स्थिति है, इस स्थिति में केवल जो नौवां शक्ति है भगवान की अनुग्रह, वह शक्ति अगर कृपा करे, वह शक्ति हमको अगर पकड़ ले, तो हम भगवान के पास जा सकते। कोई सोचे कि बुरी आदतों में हम फंसे हैं, हम संसार का भी आनंद ले लें और भगवान की भक्ति भी कर लें, तो यह बड़ा मुश्किल है। पर खास करके हमारे हिंदू लोगों के अंदर जो केवल कुछ समय के लिए जो भक्ति उमड़ आती है, जैसे मास का जो भक्ति है महीने का, जैसे कार्तिक मास चल रहा है तो लोग भीड़ मचा देते हैं, लेकिन ये भाव जीवन पर्यंत रखने वाले व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होंगे। यह नहीं कि कार्तिक आया हम चले दीप दिखा ले, भीड़ मचा ले, उसके बाद फिर हम अपने कामों में लग जाए। यह जो सामयिक भक्ति है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि फिर जब हम उसी काम में लिप्त हो जाएंगे तो फिर इस प्रकार की भक्ति क्या, हाथी का स्थान। सीधा भगवान उदाहरण दिए हैं शिव जी को इसी अध्याय के अंदर कि जैसे मदोन्मत्त हाथी होता है, हथिनी का स्थान करने के लिए पीछे पागल की तरह दौड़ता है, पेड़ को उखाड़ते तोड़ते, इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए केवल अनुग्रह ही है, भगवान अनुग्रह करेंगे तब, नहीं तो वो पागल हाथी सबको पकड़ रखा है। शिव जी को समझाने के लिए भगवान हाथी का उदाहरण दे रहे हैं। उनके लिए यह असंभव है। वर्तमान युग के लिए नारद मुनि द्वारा बताई गई पंचरात्र की विधि की एकमात्र आशा है। खैर, हमारे इस्कॉन में तो दोनों विधि, भागवत विधि और पंचरात्रि की विधि, ये दोनों मिश्रित भक्ति चलती है, पूजा की विधि जो है, ज्यादा करके पंचरात्र की विधि है, कुछ भागवत विधि भी इसके अंदर मिश्रित है। मैंने एक बार वृंदावन के एक भक्त से पूछा था कि प्रभु जी, हम लोग किस भक्ति का जो विधि है, पंचरात्रिका विधि और भागवत विधि, इसमें हम लोग किस विधि का ठीक से पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये दोनों मिश्रित विधि है हमारे स्कूल के अंदर, विशेषता ज्यादा करके प्रभुपाद जी पंचरात्र की विधि पर जोर दिए हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भागवत विधि भी है, मिश्रित है। अत्र श्री रूप गोस्वामी ने ब्रह्मयामल से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि मिरा एकांत की हरेर भक्ति उत्पातैव कल्पते। जो व्यक्ति विधि विधान का पालन नहीं करेगा वो क्या करेगा? उत्पात करेगा। कोई किसी नियम में बंधना नहीं चाहता। आजकल ऐसे गुरु भी हैं जो पूर्ण स्वतंत्र देते हैं, कुछ भी पालन नहीं करना है, आप केवल हमारे शिष्य बन जाओ, मतलब शिष्यता ग्रहण कर लेना ही मतलब सर्वोपरि उपाय है, ऐसी नहीं है। शिष्य बनने के पीछे एक ही केवल एकाकी कारण है कि हम भक्ति के नियम को ठीक से पालन करें। जो भगवान की भक्ति उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे वैदिक वांग्मय की अवमानना करे वह समाज में अनावश्यक उत्पात है। भक्ति रसामृत सिंधु 1:2:101 श्लोक में जो लोग ज्ञानी हैं और सतोगुणी हैं, वे श्रुति स्मृति तथा पंचरात्र की विधि जैसे अन्य धर्म शास्त्रों के वैदिक उपदेशों का पालन करते हैं। भगवान को इस तरह से समझे बिना मनुष्य केवल उत्पात मचाता है। इस कलयुग में अनेक गुरु उत्पन्न हो गए हैं और चूंकि वे श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिका विधि का उल्लेख नहीं करते, अतः परम सत्य को समझने के दिशा में विश्व भर में महान उत्पात मचा रहे हैं। क्योंकि विधि खुद पालन गुरु नहीं कर रहा है और बड़े बड़े उपदेश दे रहा है, कथा करते जा रहे हैं, पंडाल में बैठने का जगह नहीं होता, खड़ा रहने का जगह नहीं होता। एकाकी भक्ति मतलब भक्ति की जो शुद्ध विधि विधान है उसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, और खास करके कलयुग के लिए तो भागवत एक स्वर से कहता है कि अगर कोई जीव वास्तव में अपना उद्धार करना चाहता है या भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो केवल भागवत का शरण ले, केवल भागवत का शरण ले। सुनने से इसको ठीक से हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि श्रवण विधि उसका भी उल्लेख इस अध्याय के अंदर स्वयं भगवान करते हैं शिव जी के प्रति कि मैं आपकी स्थिति को जानता हूं। शिव जी से भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसीलिए आप लज्जित नहीं हुए, आपकी स्थिति को मैं समझ रहा हूं। ज्ञानी ज्ञानी की भाषा समझता है, विद्वान विद्वानों की भाषा को समझते हैं, भगवान समझ रहे हैं शिव जी की स्थिति। लेकिन भूल करके भी कभी शिव जी के प्रति यह भूल नहीं करना चाहिए कि शिव जी भी गिर गए, शिव जी का भी पतन हो गया यह कदापि भूल नहीं करना, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी भगवान ने इस स्वरूप को दिखाया और देखने के बाद वो प्रैक्टिकल अनुभूति कर लिए शिव जी। इसलिए हम लोग इस तुच्छ शरीर से यह कोई चैलेंज हम न करें कि हम भगवान को हम देखते हैं, हम भगवान को दिखा सकते हैं। शास्त्र के माध्यम से हम देख रहे हैं और देख सकते हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि हम भगवान को दिखा सकते हैं। परम सत्य को समझने की दिशा में विश्वभर में महान उत्पात मचा रहे, फिर भी जो कोई उपयुक्त गुरु के निर्देशन में पंचरात्र की विधि का पालन करता है वह परम सत्य को समझ सकता है। कहा गया है पंचरात्रस्य कृतनस्य वक्ता न तु भगवान स्वयं। पंचरात्र पद्धति भगवान द्वारा उसी प्रकार कही गई है जिस तरह भगवत गीता कही गई है। वासुदेव शरणम विदुर विदुर अंजसैव विदुरंजसैव। सत्य को वही समझ सकता है जिसने वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। बहुना जन्मनान्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेवम शरणमिति स महात्मा सुदुर्लभम। जो ज्ञानी है वह अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझको समस्त वस्तुओं तथा कारणों का कारण जानते हुए मेरी शरण में आते हैं, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवत गीता 7:19। जिन्होंने वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रखी है केवल वे ही परम सत्य को समझ सकते हैं। शरणागति को, भगवान की शरणागति को, भगवान की भक्ति पथ को, भगवान के दी हुई आदेश को जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना लिया है वही व्यक्ति भगवान को जान सकता है। लेकिन यह बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि पूर्णता असंभव है भगवान को जान लेना। जिन्होंने वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रखी है केवल वे परम सत्य को समझ सकते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। 1:2:7 श्लोक मतलब भागवत के प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 7वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त करता है। अतः वासुदेव भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में 18:66 में शिक्षा देते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। और भगवान को जानने का प्रभुपाद जी सूत्र बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्मास्मि तत्वतः। केवल भक्ति द्वारा ही परम पुरुष को यथा रूप में समझा जा सकता है। यह भगवान स्वयं सूत्र दिए हैं और उस सूत्र को प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंदर कोट करते हैं। भक्त को अपनी स्थिति जानने के लिए भगवान के इन वाक्यों को सदा अपने जीवा पर रखना चाहिए कि भैया हमारी कोई औकात नहीं है, भगवान अनुग्रह करेंगे तो हम भक्ति कर सकते हैं, हम नियम फॉलो कर रहे हैं, पथ पर चल रहे हैं। लेकिन भक्ति करना वैसे खतरनाक है जैसे छुरे के धार पर चल रहे हैं। कब हम किधर लटक जाएंगे कोई भरोसा नहीं। लेकिन भगवान भक्ति पथ पर चलने वाले भक्तों की हमेशा मदद किए हैं, यह नितांत सत्य है। भक्ति योग के उन्हें तो केवल भक्ति योग के द्वारा समझा जा सकता है। मया सक्त मना पार्थ योग युजन्मदाश्रय असंशयम समग्रम यथा ज्ञाच्छसि तच्छृणु। भगवद्गीता 7:1। यदि कोई वासुदेव कृष्ण को स्वयं के बारे में बोलते हुए श्रवण मात्र करके उनकी शरण में जाकर भक्ति योग का अभ्यास करता है तो उनके विषय में सब कुछ जान सकता है। देखिए प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि केवल श्रवण मात्र करके उसकी शरण में जाकर भक्ति योग का अभ्यास करता है तो वह भगवान को जान सकता है। हम लोग वक्ता का चुनाव करते हैं कि ये व्यक्ति कथा देगा, कथा करेगा तो हम सुनने जाएंगे, ये व्यक्ति पता नहीं क्या बोलता है, तुम भागवत की आदर करो। हम लोगों की सोसाइटी ऐसी है, एक वरिष्ठ व्यक्ति बता रहे थे कि प्रभुपाद जी कभी कभी अकेले भगवत गीता पढ़ते थे, जैसे व्यास आसन पर बैठ करके कि हम कथा कर रहे हैं और कोई नहीं है तो हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे वैष्णव आचार्य बिंद रहे हैं, स्वयं हमारे ठाकुर जी हैं, सुन रहे हैं, हम उनको सुना रहे हैं, उनकी वाणी उनको सुना रहे हैं, और हम लोग अपने तुच्छ ज्ञान के बल पर परीक्षण करते हैं कि व्यास आसन पर कौन बैठ रहा है, कौन कथा कर रहा है, हम अच्छा वक्ता होंगे तो हम सुनने जाएंगे, नहीं तो लगता है कि भागवत का मतलब महत्व ही खत्म हो जाएगा। आदर कीजिए भागवत को, भागवत विधि से सुनना आदर करने के संग में भी यही है कि आदर अगर हम दे रहे हैं तो भागवत जी कृपा करेंगे हमारे ऊपर। नारद जी जैसे व्यक्ति केवल महात्म्य अगर पढ़ करके देखिए तो कहते हैं कि केवल भक्ति की शुरुआत ही वहीं से होती है जब हम कथा सुनना शुरू करते हैं। यह नारद जी की उक्ति है कि जैसे ही हम कथा सुनना शुरू करते हैं वैसे भक्ति की हमारी शुरुआत हो जाती है। और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में व्यक्त करते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में नया जीवन तब आता है, नए जीवन की शुरुआत तब होती है, वह जिस दिन से भगवान के विषय में सुनना शुरू करता है उस दिन से उससे नए जीवन की प्राप्ति होती है। और हम लोग कितना विश्रांत हो जाते हैं इन सब चीजों से। भागवत को भागवत से के ढंग से अगर सुनेंगे और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो ज्ञान है सीमित है, लेकिन यह अथाह समुद्र कि अगर एक बूंद अगर गिरे हुए जीवात्मा के अंदर वो प्रवेश कर गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए यह जो मोहिनी रूप से मोहित जो परम वैष्णव आचार्य जो शिव जी हैं जो अपना उद्गार दे रहे हैं भगवान के विषय में, अगर हम पूर्णता शुद्धता सतोगुण की स्थिति में होकर के अगर इस भागवत की कथा को हम ठीक ढंग से सुनेंगे, भगवान के चरण को हम अपने जीवन में पकड़ लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आप लोग वृंदावन जाते हैं प्रसादम हाल में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर आप कृष्ण के चरण को कस करके पकड़ लेते हैं तो आपका कभी पतन नहीं होगा। हम पकड़ना सीखें भगवान कैसे पकड़ना है, केवल कथा के माध्यम से हम भगवान को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, कहीं भी हम उनको उनकी अनुभूतियां कर सकते हैं। इसलिए इन उद्गारों को ठीक से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए और उसी रूप में उस पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की। कोई एक आध प्रश्न है तो ले सकते हैं।
धन्यवाद प्रभु जी समझाने के लिए। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम समझते हैं कि जीव जो है वो पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जान सकता, कि भगवान असीमित है, जीव सीमित है, लेकिन जैसे भगवान गीता में कहते हैं माया सकता मना पार्था योगम रंजन मनाश्रय, समाग्रम महान शब्द यूज कर रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से जान सकता है, तो हम जानते हुए नहीं जान सकते।
आगे भी एक शब्द जुड़ा है असक्त, थोड़ा सा भी अगर भगवत भक्ति के प्रति अगर आसक्ति उसको हो जाएगी तो समग्रता को प्राप्त कर लेगा, प्रत्यय समझिए कि जो समग्र शब्द के बाद में जो लग रहा है कि आसक्त शब्द, अगर थोड़ी सी भी अगर आसक्ति भगवान के प्रति हो जाएगी तो समग्रता को प्राप्त कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर।
मेरा प्रश्न ये था बोलिए कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि असंशय समाग्रम, कि वो असंशय रूप से भगवान को पूर्ण रूप से समझ सकता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं जीव जो है वो चाहे मतलब पूर्ण तीनों से ऊपर भी क्यों ना आ जाए लेकिन भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, तो अब इन दोनों का सम्मेलन कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा रोशनी डालो।
दो शब्द है संशय और असंशय, तो इस शब्द में जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न उसमें असंशय, जिसको असंशय है वह एकदम पूर्णता या समझ चुका है कि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है तो वो तो समझ सकता है ठीक से, जिसको लेस मात्र भी अगर संशय है भगवान की शक्ति ऊपर भगवान के किए हुए करा बातों को तो मुश्किल है, वो नहीं समझ पा, क्योंकि यह शब्द भूल जाए, संशय शब्द भूल जाए और संशय की स्थिति में हम भगवान को ठीक से समझ पाए। कर्तुम अकर्तुम समर्थव्यम, सब कुछ करने में भगवान समर्थ है, अगर इस चीज को अगर हम जान लें तब तो हम भगवान को आसानी से समझ सकते हैं। नहीं तो एक नीति श्लोक में लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते जो अधकचरा है, मतलब बीच में है, जो मूर्ख व्यक्ति है उसको आसानी से समझाया जा सकता है, विद्वान है उसको आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन जो बीच का व्यक्ति है उसको मुश्किल है। इसलिए अगर हम लोग संशय नहीं करते हैं भगवान के विषय में, एक तरफ रहते हैं तो हम लोग भगवान को समझ जाएंगे या आशा की जा सकती है। प्रबंधन प्रभुपति जी उनका वो भी हाथ पीछे उठा रहा है।
फिर जैसे आपने बताया कि इस कौन में जो पंचरात्रि की विधि मुख्य है और इसमें थोड़ी भागवत विधि का भी मिश्रण है, फिर आगे आपने बताया कि भगवान को समझने के लिए एकमात्र उपाय भागवतम की शरण ग्रहण करना है, तो दोनों चीजें हैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिव लग रही, इसमें कौन सा?
पूजा की विधि के विषय में मैंने बताया कि पूजा की विधि जो हम लोग पालन करते हैं वह मिश्रित है, क्योंकि पंचरात्रि की विधि जो है इतना कठिन विधि विधान है कि किसी भी पुजारी को अगर वो नियम पालन करने को कह दो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। इसलिए हम लोग भगवान की सेवा के भाव से, भगवान को खुश करने के भाव से उनका हम मसाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, लेकिन इन सेवाओं के द्वारा हम उनका शरण ग्रहण करना चाहते हैं। नहीं तो नियम इतने हैं पंचरात्रि का विधि में कि नियम ही फॉलो करने में पुजारी का टाइम बीत जाएगा और उतना आचवनी और क्या क्या विधि विधान है, मंत्र है का उच्चारण है, को बेचारे के पास टाइम ही नहीं रहेगा, कोई ड्रेसिंग भी करे और कुछ आगे कर सके, बहुत नियम है उसके अंदर। आप देखे हुए थोड़ा सा करते हैं लोग ऐसे जब कितना है यहाँ वहां मंत्र अगर बोलना शुरू करें तो सारा उनका टाइम जाएगा। इसलिए मिश्रण भक्ति, इसीलिए लास्ट में भागवत विधि भी प्रभुपाद जी ने मिश्रित किया कि भागवत विधि में यह बताया गया है कि पूर्णता भगवान को प्राप्ति करने का शरण है या सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि भागवत में बार बार कहा जा रहा है कि भगवान की सेवा करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, तो उसी विधि के अंदर भागवत विधि मिश्रित कर दी गई है कि सबका यह कारण पंचरात्रि का विधि पालन करने का उद्देश्य यह है कि हम भगवान को सब तरह से खुश करें। राधे श्याम आपका भी प्रश्न है, हरे कृष्ण। चलिए आपका प्रश्न लास्ट प्रश्न होगा, दीजिए प्रभु जी को माइक दीजिए। हरे कृष्ण बोलिए। पंतजली
ये पद्धति जो पात्रात्र भागवत है ऐसे ही आपने पद्धति का जिक्र किया तो मेरा भी मन में आया कुछ बोलो। ये तीन प्रकार की भक्ति होती है, जैसे अद्भुत भक्ति और व्यास जी की भक्ति और नारद जी की भक्ति, तो हमारा भी मिश्रण तीनों चीज का है इस में, व्यास पूजा में आप बैठे हो, कितना सुबह करते ही है रथ यात्रा निकालते, वो नाथ पद्धति है भाई।
श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ राज श्रवण भागवतम की।